पृष्ठ संख्या 15, हेडिंग है सॉक्रेटिस। 470 ईस्वी पूर्व से 399 ईस्वी पूर्व। सॉक्रेटिस की आंखें बड़ी, होंठ मोटे और नाक चपटी थी। वे एक लंबा ढीला चोंगा पहनते थे जो सर्दी और गर्मी दोनों में काम देता था। प्रायः नंगे पैर घूमते थे। वाद विवाद में उनकी अत्यधिक रुचि थी और वे प्रायः बाजार में या मित्र मंडलियों में दार्शनिक चर्चा करते रहते थे। उनका जीवन ऋषि कल्प था। उनको सर्दी गर्मी, सुख दुख, भूख प्यास आदि द्वंद नहीं सताते थे। उन्हें अपने शरीर पर अधिकार था। वे इंद्रिय जीत थे। उनके विषय में की गई इस धर्मवाणी को कि सॉक्रेटिस सब मनुष्यों में सर्वाधिक बुद्धिमान हैं, उन्होंने इस अर्थ में समझा कि वे सचमुच अन्य लोगों से अधिक बुद्धिमान हैं। पृष्ठ संख्या 16, क्योंकि उन्हें अपने अज्ञान का ज्ञान है, जबकि अन्य लोग अज्ञानी होते हुए भी स्वयं को ज्ञानी समझते हैं। सॉक्रेटिस का यह ध्येय था कि वे लोगों को अज्ञान मार्ग से हटाकर ज्ञान मार्ग की ओर प्रवृत्त करें। उनकी माता दाई थी और वे अपने आप को भी लोगों के विचार रूपी बच्चों को उत्पन्न कराने में और यह बताने में कि वे शुद्ध हैं या संकर निपुण समझते थे। साथ ही साथ सॉक्रेटिस रहस्यवादी भी थे। उन्हें बहुधा अंतरात्मा की ध्वनि सुनाई देती थी और महाभाव अर्थात ट्रेंसेज भी आते थे। उन पर अधार्मिक होने का और युवकों को बहकाने का अभियोग लगाया गया और उन्हें विषपान द्वारा मृत्युदंड दिया गया। उनका वास्तविक अपराध तत्कालीन प्रजातंत्र और उसके नेताओं की पोल खोलकर उनके अज्ञान, दंभ और आडंबर का प्रखर खंडन करना था। वे एक मास तक जेल में रहे। उनके शिष्य तथा मित्र उनको वहां से भगा ले चलने के लिए तैयार थे, किंतु उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया। वे शांतिपूर्वक हंसते हंसते भयंकर विष का प्याला पीकर अमर हो गए। प्लेटो ने अपनी एपोलॉजी नामक कृति में सॉक्रेटिस का वह महत्वपूर्ण भाषण जो उन्होंने अपने अभियोग की सफाई में न्यायालय में दिया है और अपनी फीडो नामक कृति में उन्होंने सॉक्रेटिस के अंतिम समय का वर्णन किया है। सारे यूरोप की साहित्यिक रचनाओं में फीडो की तुलना की रचना पाना कठिन है। सॉक्रेटिस ने अपने सफाई के भाषण में कहा था, एथेंस के नागरिकों, मैं तुम्हारा आदर और तुमसे प्रेम करता हूँ, किंतु तुम्हारी आज्ञा मानने की अपेक्षा मैं ईश्वर की आज्ञा मानूंगा और जब तक मुझ में जीवन और शक्ति है मैं दार्शनिक उपदेश देना और उनके अनुसार स्वयं आचरण करना बंद नहीं कर सकता और मेरा विश्वास है कि इस राज्य की मेरी इस ईश्वर सेवा से बढ़कर और कोई भलाई नहीं हुई। शरीर तो आत्मा का बंधन है, आत्मा अमर है, भले आदमी के लिए परलोक में कोई भय नहीं। अब वियोग का समय आ गया है और हम अपने अपने मार्गों पर चलते हैं। मैं मृत्यु पथ पर और तुम जीवन पथ पर, इनमें कौन सा मार्ग उत्तम है ईश्वर ही जानता है। फीडो में साकेटिच के अंतिम समय का वर्णन है। वे अपने मित्रों को समझाते हैं कि आत्मा अमर है और सच्चरित्र व्यक्ति के लिए परलोक में भी आनंद है। फिर वे शांतिपूर्वक हंसते हंसते विस्पान कर लेते हैं। फीडो के अंतिम शब्द ये हैं, इस प्रकार हमारे मित्र का अंत हुआ। उस व्यक्ति का जो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ पुरुष, सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा चरित्रवान था। पृष्ठ संख्या 17। साकेटिच के दर्शन का ज्ञान मुख्यतः हमें उनके प्रधान शिष्य प्लेटो की कृतियों द्वारा उपलब्ध होता है। प्लेटो एक महान दार्शनिक होने के साथ साथ एक महान साहित्यकार, कलाकार भी थे। अतः उनके विचारों का साकेटिच के विचारों के साथ मिल जाना स्वाभाविक है। तथापि सामान्यों या विज्ञानों का सिद्धांत, इंद्रियानुभूति और विज्ञान का भेद, विशुद्ध विज्ञान स्वरूप शिव तत्व और आत्मा की अमरता आदि सिद्धांत मूल रूप में साकेटिच के सिद्धांत कहे जा सकते हैं, जिनका प्लेटो ने विकास किया। ग्रीक दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा बाह्य प्रकृति के विवेचन की ओर थी। इसको आत्मविमुख करने के प्रयास साकेटिच के पहले भी किए गए। पाइथागोरस ने स्वरूप या संख्या द्वारा, हेरेक्लाइट्स ने सार्वभौम विज्ञान द्वारा, पार्मेनाइडीज ने शुद्ध सत्तारूप विज्ञान द्वारा, एनेक्जेगोरस ने परम विज्ञान द्वारा और प्रोटेगोरस ने मानव मानदंड द्वारा दर्शन की प्रवृत्ति को आत्म अभिमुख करने का प्रयास किया, किंतु इनमें कोई भी अधिक सफल नहीं हो सका। इस सफलता का श्रेय निःसंदेह साकेटिच को है, जिन्होंने अस्पष्ट रूप से तत्व के विज्ञान स्वरूप का प्रतिपादन किया और उसको दर्शन का केंद्र बना दिया। विज्ञान ही मानव का स्वरूप है। यह विज्ञान साक्षात्कार का विषय है। नैतिक जीवन इस साक्षात्कार में योग देता है। साकेटिच ने प्रथम बार इस विज्ञान को नैतिक जीवन का भी आधार बनाया। हेरेक्लाइट्स ने अवनत मार्ग और उन्नत मार्ग में भेद बताया। पार्मेनाइडीज ने व्यवहार और सत्य का भेद किया। साकेटिच ने इस व्यवहार और परमार्थ के भेद को और अधिक स्पष्ट किया। साकेटिच के विज्ञानवाद या सामान्यवाद अर्थात द डॉक्ट्रिन ऑफ आइडियाज आर फॉर्म्स का वर्णन प्लेटो ने फीडो में किया है। यह विज्ञानवाद इंद्रिय अनुभव और ज्ञान के भेद पर प्रतिष्ठित है। इंद्रिय अनुभव व्यवहार है और ज्ञान परमार्थ। इंद्रिय अनुभव के विषय अनित्य, क्षणिक और मिथ्या है। ज्ञान के विषय नित्य, अपरिणामी और सत्य हैं। इंद्रियों का स्तर परिणाम, गति और अनित्यता का स्तर है। ज्ञान का स्तर सत्य, नित्य और परमार्थ का स्तर है। गणित के विषय स्वरूप सामान्य या विज्ञान है। असली वृत्त या त्रिभुज तो हमारे ज्ञान में ही है। हम जो वृत्त या त्रिभुज खींचते हैं वे इस असली वृत्त या त्रिभुज के प्रतिरूप मात्र हैं। असली वृत्त या त्रिभुज हम नहीं खींच सकते। इंद्रिय अनुभव के विषय इन विज्ञानों के समान बनने का प्रयत्न करते हैं। पृष्ठ संख्या 18। किंतु ठीक उन जैसे नहीं बन सकते। विशेष या व्यक्ति सामान्य का अनुकरण करते हैं किंतु सामान्य नहीं बन सकते। पाइथागोरस ने भी अपने स्वरूपों का वर्णन इस प्रकार किया था और उनका गणित की संख्याओं से तादात्म्य कर दिया था। साकेटीज ने उन स्वरूपों को गणित तक ही सीमित नहीं रखा। इसका प्रयोग शिव और सुंदर के क्षेत्रों में भी किया। असली शिवत्व या कल्याण और असली सौंदर्य विज्ञान रूप है। इंद्रिय अनुभव में इनकी क्षीण प्रतिकृतियां ही प्राप्त होती हैं। ज्ञान के विषय सामान्य हैं और इंद्रिय अनुभव के विषय विशेष या व्यक्ति हैं। सामान्य स्वरूप और विज्ञान पर्यायवाची शब्द हैं। सत्य ज्ञान इन सामान्यों का ज्ञान ही है। विशेषों अर्थात व्यक्तियों का ज्ञान केवल व्यवहार है। विशेषों की सत्ता सामान्य में भाग लेने के कारण है। सामान्य विशेषों में अनुस्यूत होकर उनको अनुप्रणित करता है। विशेष सामान्य की क्षीण प्रतिकृतियां, प्रतिलिपियां, प्रतिरूप या प्रतिबिंब हैं। सामान्य हमारी बुद्धि की कल्पना नहीं है, इनकी वास्तविक सत्ता है। वस्तुतः असली सत्ता इनकी ही है। ये सामान्य या विज्ञान दिव्य लोक में रहते हैं। आत्मा अमर और दिव्य लोक की निवासी है, जहाँ वह इन विज्ञानों का साक्षात करती है। जब आत्मा इस लोक में आकर शरीर से परिच्छिन्न हो जाती है तो उसका दिव्य ज्ञान क्षीण और मंद हो जाता है। फिर भी उसे दिव्य ज्ञान याद आते हैं और वह उनको ग्रहण करने का प्रयास करती है, किंतु इस प्रयास में वह सफल नहीं हो पाती और उसके विज्ञान इन वास्तविक दिव्य विज्ञानों के क्षीण प्रतिबिंब ही रह जाते हैं। इसका कारण इंद्रिय अनुभूति है। हमारा सांसारिक ज्ञान इंद्रिय अनुभूति पर निर्भर है और इंद्रिय अनुभूति दिव्य विज्ञानों पर आवरण डाल देती है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके हम शरीर में रहते हुए उससे निर्लिप्त अशरीर बन सकते हैं और आत्मज्ञान द्वारा दिव्य विज्ञानों का साक्षात्कार कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि क्या विज्ञानों का दिव्य लोक और इंद्रिय अनुभव का यह लोक नितांत भिन्न है? क्या एक पूर्ण सत और दूसरा पूर्ण असत है? इनमें कोई संबंध भी है या नहीं? साकेटीज का उत्तर है कि ये नितांत भिन्न नहीं हो सकते। इंद्रिय जगत अनित्य, क्षणिक, अपरिणामी और मिथ्या तो अवश्य है, किंतु नितांत असत नहीं। यदि जगत नितांत असत होता तो प्रतीति का विषय भी नहीं बन सकता था। इसको मिथ्या कहने का अभिप्राय इतना ही है कि इसकी सत्ता अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। पृष्ठ संख्या 19। यह विज्ञान जगत के आलोक से ही प्रकाशित होता है। इसकी सत्ता इसलिए है कि इसमें विज्ञान अनुस्यूत है, या यह छाया तो अवश्य है किंतु यह विज्ञान रूपी काया की छाया है। बिना काया के छाया भी नहीं होती। इंद्रिय जगत की सत्ता विज्ञान जगत में भाग लेने के कारण है। इंद्रिय जगत के पदार्थ विज्ञान जगत में जितना अधिक भाग लेते हैं वे उतने ही अधिक सत हैं। इंद्रिय जगत विज्ञान जगत का प्रतिबिंब है। जिन पदार्थों में यह प्रतिबिंब जितना अधिक स्पष्ट होता है वे उतने ही अधिक सत हैं। सत के व्यवहारिक न्यून अधिक का तारतम्य साकेटीज को मान्य है, किंतु अब भी एक समस्या और रह जाती है। वह इस दिव्य विज्ञान जगत में विज्ञानों का परस्पर भेद। क्या ये दिव्य विज्ञान परस्पर भिन्न और पृथक ही रहते हैं, या इनमें सामंजस्य और एक रूपता है? क्या ये बिखरे हुए ही हैं या एक सूत्र में बद्ध हैं? इस समस्या का समाधान फीडो में तो नहीं ही है, किंतु इसकी झलक सिंपोजियम में और इसका स्पष्टीकरण रिपब्लिक में मिल जाता है। साकर्टिज के इन दिव्य विज्ञानों में भी तारतम्य है। ये बिखरे हुए नहीं हैं किंतु एक सूत्र में बद्ध हैं। यह सूत्र इन विज्ञानों का भी विज्ञान है। यह परम विज्ञान है। इस परम विज्ञान को सिंपोजियम में विशुद्ध सौंदर्य अर्थात प्योर ब्यूटी और रिपब्लिक में विज्ञान स्वरूप शिव तत्व अर्थात आइडियाज ऑफ गॉड कहा गया है। यह शिव तत्व समस्त दिव्य विज्ञानों में और उनके द्वारा समस्त जगत में अनुस्वित है। यह परम तत्व है और इसका साक्षात्कार मानव जीवन का लक्ष्य है। कुछ विद्वानों के अनुसार साकेटीज का दर्शन विज्ञानों के बहुत तक ही सीमित रह गया और इस सूत्र आत्मा शिव तत्व तक नहीं पहुंच पाया है। उनके अनुसार इस सूत्र आत्मा का प्रतिपादन प्लेटो द्वारा ही हुआ है। हम ऊपर लिख चुके हैं कि प्लेटो के सिद्धांत अपने गुरु साकेटीज के सिद्धांतों में इस तरह घुल मिल गए हैं कि उनकी सीमा का स्पष्ट निर्धारण अशक्य है। फिर भी यह मानना युक्त है कि प्लेटो साकेटीज के मुख से ऐसी कोई बात नहीं कहला सकते जो साकेटीज की अपनी न रही हो। उन्होंने ये सब सिद्धांत साकेटीज के मुख से कहलाए हैं। प्लेटो ने अपना मत अपनी बाद की रचनाओं में व्यक्त किया है, जिनमें साकेटीज प्रधान वक्ता नहीं हैं। दूसरे साकेटीज के रहस्यवाद को, उनकी साधना को, उनकी समाधि अवस्था और उनके महाभावों को देखते हुए यह मानना सर्वथा उचित है कि उनको इस शिव तत्व का ज्ञान अवश्य हुआ था। पृष्ठ संख्या 20। उपर्युक्त सब सिद्धांत मूल रूप में साकेटिच के ही हैं। हाँ, यह अवश्य सत्य है कि इनको इस प्रकार स्पष्ट रूप में रखने का श्रेय प्लेटो को है। साकेटिच के दर्शन की पद्धति द्वंद्वात्मक तर्क अर्थात डायलेक्टिकल रीजनिंग की है। यह प्रश्नोत्तर की पद्धति है। वे वाद विवाद के अत्यंत प्रेमी थे, किंतु यह वाद विवाद शुष्क या व्यर्थ का वाद विवाद नहीं था। यह वाद विवाद तत्वबोध के लिए था। यह पद्धति मुख्यतः निषेधात्मक थी, क्योंकि इसके द्वारा अंधविश्वासों और अयुक्त मान्यताओं का खंडन किया जाता है। साकेटिच का निश्चय था कि स्वविकल्प तर्क द्वंद्वों में ही फंसा रहता है और दिव्य विज्ञान तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि दिव्य विज्ञान निर्विकल्प स्वानुभूति का विषय है। अतः तर्क का मुख्य कार्य अपने ही विकल्पों का खंडन करके निषेध रूप से यह सिद्ध करना है कि उसकी गति तत्व तक नहीं है। लोग यह मान लेते हैं कि उनकी स्वविकल्प बुद्धि का ज्ञान सत्य ज्ञान है, कि उनकी मान्यताएं सुदृढ़ हैं, कि उनके विश्वास अकाट्य हैं, किंतु यह उनका अज्ञान है। साकेटिच के दार्शनिक पद्धति का लक्ष्य लोगों को अपने अज्ञान का ज्ञान कराकर उनको स्वानुभूति की ओर अग्रसर करने का था, और इसके लिए उनको मृत्युदंड मिला। साकेटिच ने दर्शन को विज्ञानों का विज्ञान साइंस ऑफ साइंसेज माना है। अन्य विज्ञान साइंसेज विकल्पों को हाइपोथेसिस को मानकर चलते हैं। दर्शन विकल्पों का खंडन करके चलते हैं, जहां अन्य विज्ञान समाप्त हो जाते हैं वहां दर्शन प्रारंभ होता है, क्योंकि दर्शन का लक्ष्य विशुद्ध विज्ञान स्वरूप तत्व का साक्षात्कार है। ज्ञान ही धर्म या सद्गुण है, अर्थात वर्च्यू है। शिव तत्व का ज्ञान सर्वोत्तम धर्म है। अज्ञान ही अधर्म अर्थात वाइस है। शिव तत्व का ज्ञान न करना सबसे बड़ा अधर्म है। यह आत्महनन है। ज्ञान कर्म नहीं है और न कर्म द्वारा प्राप्त हो सकता है। यह तो स्वरूप लाभ है। लौकिक दृष्टि से सत्कर्मों को धर्म कहते हैं। ये अभ्यास से प्राप्त किए जा सकते हैं। इनसे चित्त शुद्धि होती है, किंतु इनको वास्तविक धर्म नहीं कह सकते। वास्तविक धर्म तो ज्ञान ही है, जिसकी प्राप्ति होने पर अधर्म हो ही नहीं सकता। प्रथम अध्याय समाप्त।